ये अगस्त 2014 है और केविन सुजीहारा के लिए ये वाकई एक बहुत मुश्किल दिन है। केविन को एक बिलियन डॉलर जितना बड़ा फैसला लेना है और अगर वो गलत होते हैं तो ना केवल उनके स्टॉक होल्डर्स ना खुश होंगे बल्कि उनके कुछ एम्प्लॉयज को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और शायद उनकी नौकरी भी चली जाए। तो सुजीहारा इज्जतदार फिल्म स्टूडियो वॉर्नर ब्रदर्स के हेड है। यही वो स्टूडियो है जो डीसी कॉमिक्स का मालिक है और डीसी कॉमिक्स की सभी फिल्मों को रिलीज करता है। अब आप भले ही कॉमिक्स बुक्स ना पढ़ते हो लेकिन कैरेक्टर्स को जरूर जानते होंगे, बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन। आपके पास शायद कभी उनके फोटो छपे लंच बॉक्स या चादरें रही होंगी। और ये सुपर हीरोज हैं जो आज सुजीहारा के दिमाग में हैं, क्योंकि उनका स्टूडियो एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, एक ऐसी समस्या जिसे सुपरमैन भी एक छलांग में पार नहीं कर सकता। कुछ महीने पहले सुजीहारा ने वॉर्नर ब्रदर्स की एक बहुत बड़े बजट वाली फिल्म 6 मई 2016 को रिलीज करने का फैसला किया था। फिल्म थी बैटमैन बनाम सुपरमैन और इसे स्टूडियो की साल की सबसे बड़ी फिल्म होना चाहिए था, जिसमें इसके दो बड़े सुपरहीरो पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सुजीहारा बर्बैंक के विशाल स्टूडियो में अपने ऑफिस में बैठे हैं, उन्हें कुछ बुरी खबर मिलती है। एक और स्टूडियो ठीक उसी दिन अपनी ब्लॉकबस्टर रिलीज करने जा रहा है और ये कोई ऐसा वैसा स्टूडियो या फिल्म नहीं है, ये सुपर हीरो जॉनर में डीसी के कट्टर प्रतिद्वंदी डिज्नी के मार्वल स्टूडियो की एक फिल्म है। मार्वल में स्टूडियो हेड केविन फाइगी शतरंज के इस खेल का आनंद ले रहे हैं। 2008 में आयरन मैन के रिलीज होने के बाद से मार्वल ने बॉक्स ऑफिस में अपना दबदबा कायम रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हिट की एक अटूट कड़ी को बरकरार रखा है। और क्या उन्हें अपनी रणनीतिक ताकत के इस खेल पर विश्वास है? जी हाँ, उन्हें है। सुपर हीरो बिजनेस में ये दो सबसे बड़े नाम है, डीसी कॉमिक्स और मार्वल, और वो एक दूसरे को फिर से घूर रहे हैं जैसा कि वो 50 सालों से ज्यादा से करते आ रहे हैं। खुद भी कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स की तरह, किसी को तो हारना ही होगा, किसी को तो पलक झपकानी ही पड़ेगी। अगर दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं तो ये दर्शकों को बांट देगा और इससे बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही स्टूडियोज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुजीहारा इस फैसले पर भी उलझन में, सोशल मीडिया में घमासान मच जाता है। डीसी और मार्वल के फैंस इस बात पर लड़ते हैं कि कौन सी फिल्म को झुकना चाहिए। आखिरकार सुजीहारा पलकें झपकाते हैं, केविन फाइगी मुस्कुराते हैं, उनकी फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर अपनी रिलीज की तारीख पर ही आएगी। बैटमैन बनाम सुपरमैन को नई तारीखें ढूंढनी होंगी। बूम बूम ही तो चाहिए। मार्वल और डीसी के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े का बस एक और दिन। वंडरी से मैं हूं संदीप आर्या और ये है बिजनेस वॉर्स। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज को सुना था तो आपने उन बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में जरूर सुना होगा जिन्होंने नेटफ्लिक्स और एचबीओ, नाइकी और एडिडास के बीच की लड़ाई को आगे बढ़ाया था। अगले 6 एपिसोड्स में हम आपको कॉमिक इंडस्ट्री की वास्तविक और पौराणिक दुनिया से रूबरू करवाएंगे। ये पहला एपिसोड है ओरिजिनल स्टोरीज। डीसी कॉमिक्स और मार्वल सुपर हीरो के बिजनेस में सबसे बड़े नाम है। वो लगभग 5 दशकों से एक दूसरे पर वॉर कर रहे हैं, जैसे बैटमैन और जोकर के बीच की लड़ाई हमेशा से चली आ रही है। ज्यादातर किशोर हार्डकोर कॉमिक बुक रीडर्स के दिमाग में शुरू हुई लड़ाई एक मल्टी बिलियन डॉलर की वीर गाथा जैसी लड़ाई में बदल गई है, जिसे अब लड़ा जा रहा है बोर्ड रूम्स में, सोशल मीडिया पर और सिनेमाघरों में, जहां सुपर हीरोज की कई सुपर पावर्स के साथ एक दूसरे को उड़ाने से आवाजों की सीटें कांपती हैं। लब्बो लुबाब ये कि रंगीन कॉमिक बुक हीरोज हर जगह है और वो एक बड़ा बिजनेस है। हो सकता है कि आप उन लाखों लोगों में से एक हो जिन्होंने हाल ही में ब्लैक पैंथर फिल्म को रिकॉर्ड यूएस ओपनिंग कराने में हाथ बटाया। वैसे ये एक मार्वल फिल्म है। या हो सकता है कि आपने डेडपूल सीक्वल के लिए अपना टिकट पहले ही खरीद लिया हो। या हो सकता है कि आप अपने स्पैंडेक्स पहने हीरोज का आनंद टीवी पर लेना पसंद करते हैं। मल्टीप्लेक्स की तरह ये कैरेक्टर्स यहाँ भी हावी है। द फ्लैश, सुपरगर्ल, एजेंट ऑफ शील्ड, द डिफेंडर्स, एरो, ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। और यकीन मानिए मेरा, फैंस दल चुनते हैं डीसी वर्सेस मार्वल। कॉमिक बुक्स मेनस्ट्रीम पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं है, वो ही पॉप कल्चर है। सुपर हीरो पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए टपकते बेसमेंट और छोटे कॉमिक बुक स्टोर से बाहर निकल आए। अकेले 2017 में ही साल की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से 5 कॉमिक बुक कैरेक्टर्स वाली फिल्में थी। ये कुछ कह रहा है, लेकिन बेशक ये हमेशा से तो ऐसा नहीं था। तो मार्वल और डीसी ने टॉप पर पहुंचने की लड़ाई कैसे लड़ी? और बच्चों का मनोरंजन करने वाली ये कॉमिक बुक्स अचानक ही पॉप कल्चर पर कैसे हावी होने लग गई? इस बदलाव को समझने के लिए आइए 1960 के दशक की शुरुआत में चलते हैं। स्पेस रेस अच्छी तरह चल रही है जब जॉन ग्लेन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी बने। चबी चेकर ने अभी ट्विस्ट नाम से एक डांस क्रेज शुरू किया है और एक युवा हैंडसम प्रेसिडेंट ने अभी अभी व्हाइट हाउस पर दावा किया है। ये मत पूछो कि अमेरिका तुम्हारे लिए क्या करेगा। डीसी टॉप पर है, इसके लिए इस आदमी का शुक्रिया। सुपरमैन एक चली हुई गोली से भी तेज। दरअसल चलिए और पीछे चलते हैं। आप देखिए, डीसी ने 1938 में पहली सुपरमैन कहानी के प्रकाशन के साथ अमेरिकी सुपर हीरो को पेश किया था। ये कैरेक्टर जेरी सीगल और जो श्वस्ट नाम के क्लीवलैंड के दो पढ़ाकू टाइप बच्चों ने बनाया था। उन्होंने 4 साल तक कैरेक्टर को कॉमिक स्ट्रिप के रूप में बेचने की कोशिश की, लेकिन हर पब्लिशर ने इसे खारिज कर दिया। आखिर में डीसी ने एक नई मैगजीन के चलाने के लिए कैरेक्टर को खरीदा, जिसे एक्शन कॉमिक कहा जाता था। दोनों क्रिएटर्स को कुल $130 मिले। सुपरमैन जल्द ही स्लाइस ब्रेड के बाद अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज बन गया था। असल में वो इतना लोकप्रिय हो गया कि वो अपना खुद का स्लाइस ब्रेड का ब्रांड निकाल सकता था। सालाना थैंक्सगिविंग डे परेड देखने के लिए न्यूयॉर्क की सड़कों पर लाखों लोग लाइंस लगाए हुए हैं, जिनमें मशहूर ऐतिहासिक और स्क्रीन पर्सनैलिटीज को दिखाने वाले बड़े बड़े गुब्बारों जैसे फुल फिगर्स की एक सीरीज शामिल है। जल्द ही उनकी मैगजीन की सेल 1 मिलियन कॉपीज तक पहुंच गई। बुक से अलमारियां भरने लगी। 1939 में मेसी की थैंक्सगिविंग डे परेड में सुपरमैन बलून ने उड़ान भरी। डीसी चलाने वाले लोगों को खुद कॉमिक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पैसा बनाने में उन सबकी दिलचस्पी थी। और वो देख सकते थे कि सुपरमैन के जैसा किसी ने उनके खजाने को नहीं भरा था। उन्होंने और कॉस्ट्यूम्स वाले हीरोज को लाने की ठान ली। 1939 में बैटमैन ने छतों से झूलना शुरू कर दिया और इसके तुरंत बाद वंडर वुमन ने बुरे लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। डीसी का दबदबा 2 और दशकों तक जारी रहा। सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी ऊपर नीचे होती रही, लेकिन डीसी ने मंदी के वक्त को भी भुना लिया, क्योंकि सुपरमैन का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। वो उसे यूं ही मैन ऑफ स्टील नहीं कहते हैं। जो हमें वापस 1960 के दशक में लाता है। सुपरमैन की एक पब्लिशिंग में 8,10,000 कॉपीज बिकती है और लगता है कि डीसी के पास सब है। सबसे बढ़िया टैलेंट, सबसे मशहूर और बिकने वाले सुपर हीरोज कैरेक्टर्स, और मिडटाउन मैनहट्टन में एक सुनहरी गगनचुंबी इमारत में आरामदायक कॉर्पोरेट ऑफिस। मार्वल आसपास ही है, वो भी मिडटाउन मैनहट्टन में ही है, लेकिन उनका ऑपरेशन थोड़ा और कमजोर कह सकते हैं। असल में पब्लिशर के पास बस एक फुल टाइम एम्प्लॉई है और उसका नाम स्टैनली है। शायद आपने ये नाम सुना ही होगा। महान स्टैनली कॉमिक बुक के फेडरिको फेलिनी की तरह बन जाने वाले हैं और मार्वल की पहचान भी ठीक वैसी ही जैसी कि वॉल्ट डिज्नी अपनी बनाई हुई कंपनी के लिए। आपने शायद उन्हें आज की मार्वल फिल्मों में उनके ढेर सारे कैमियो में से किसी एक में देखा ही होगा। ये रहे वो लंबे और दुबले पतले, पीछे को कढ़े हुए बाल, सफेद मूछें, काला चश्मा और उनकी आंखों में एक बचकानी सी चमक है। लेकिन 1960 में वो अभी तक एक लेजेंड नहीं है। वो बस एक गरीब अनाड़ी लेखक हैं और एडिटर हैं जो निचले दर्जे के फनी बुक्स बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं। रोमांस, हॉरर और वाइल्ड वेस्ट की सैकड़ों मामूली कहानियों पर मंथन कर रहे हैं। असल में मार्वल इस समय एक सुपर हीरो कंपनी नहीं है। उन्हें 1939 में एक साथ स्थापित किया गया था बहुत सारे कॉमिक बुक्स पब्लिशर्स की तरह वो सुपरमैन की सफलता के पीछे भागने के लिए पैदा हुए थे। 1939 में उनकी पहली कॉमिक बुक को मार्वल कॉमिक्स नंबर 1 कहा गया और इसमें दो सुपर पावर वाले कैरेक्टर्स की शुरुआत हुई। सबमरीनर पानी के नीचे का एक शक्तिशाली राजा था और फिर ह्यूमन टॉर्च, एक एंड्रॉइड जिसमें आग की लपटों में बदलने की ताकत थी। दोनों थोड़ा बहुत ही लोकप्रिय हुए, लेकिन कंपनी की सबसे बड़ी शुरुआती सुपर हीरो सफलता कैप्टन अमेरिका थी। वो 1941 में न्यू स्टैंड में छाया हुआ था, एक स्टार से सजा एवेंजर, हिटलर के छक्के छुड़ाता, बढ़िया से कवर पर छपा हुआ था। लेकिन कुछ सालों के बाद पाठक जल्द ही इसके सभी सुपर हीरो से उब गए और मार्वल ने दूसरी जॉनर की ओर रुख कर लिया। दरअसल 1950 के दशक में मार्वल लगभग बिजनेस से बाहर हो गया था जब अचानक उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खो दिया। वो कंपनी जो मैगजीन को बेचने के लिए न्यूज स्टैंड तक लेकर आती थी, कंपनी के मालिक को लगभग सभी को नौकरी से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। सभी को निकाल दिया गया सिवाय स्टैन ली के। हो सकता है इसका एक कारण हो कि ली अपने मालिक के रिश्तेदार लगते थे। 1939 में हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद ली काम की तलाश करने लगे। उनके अंकल उनके पास आए।
मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए काम मिल गया है। तुम्हारे कजिन के पति 42nd स्ट्रीट पर एक पब्लिशिंग कंपनी चलाते हैं। पब्लिशिंग? हाँ, पैन फैक्ट्री में ऑफिस बॉय के तौर पर काम करने से तो बेहतर ही है। हाँ, कॉमिक्स शायद। हाँ, मुझे आइडिया पसंद है।
उन्होंने एक अर्दली के तौर पर शुरुआत की, आर्टिस्ट के लिए सैंडविच लाना और इंक वेल को फिर से भरना। जल्दी ही वो पूरी जगह को संभालने लगे। 1941 में एडिटर ने अचानक पद छोड़ दिया और किसी और के ना होने से ली को एडिटर बना दिया गया। वो उस समय बस 18 साल के थे। नए काम ने उन्हें कंपनी के सब काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इस काम की वजह से कभी कभी कुछ मजाकिया किस्से होते थे, जैसे जब कभी ऑफिस में विजिटर्स आते।
जरा सुना नौजवान, क्या आप जानते हैं कि मुझे एडिटर मिस्टर ली कहां मिलेंगे?
विजिटर्स मिस्टर ली से ही बात कर रहे होते थे, हालांकि उन्हें मालूम नहीं था कि रिसेप्शन एरिया में स्नीकर्स और स्वेटशर्ट पहना ये बच्चा कोई अर्दली नहीं है बल्कि आर्टिस्ट और चीफ एडिटर है। ली ऐसे जवाब देते जैसे वो कोई अर्दली हो, बॉस नहीं।
हाँ बस एक मिनट में सर, मैं उन्हें बताता हूं कि आप आए। मार्वल कॉमिक्स में आपकी कॉल को किस तरफ डायरेक्ट करूं?
स्टैन बोल रहा हूं, क्या आप प्लीज लॉबी में मौजूद उस आदमी से बात कर सकते हैं कि आज मैं पूरे दिन के लिए बाहर हूं?
क्या?
जैसा बोल रहा हूं कह दो प्लीज।
विजिटर तब तक चला जाएगा इस कशमकश के साथ कि क्या वो कभी इस रहस्यमय एडिटर से मिल पाएगा। 1960 तक स्टैनली का मन पूरी तरह से थक चुका है। वो बस ढेर सारी फॉर्मूलाबद्ध किशोर कहानियों को ही लिख पा रहे हैं। यहां तक कि उन्हें ये लगने लगा है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ली महान अमेरिकी उपन्यास लिखने का सपना देखते, यही वजह है कि वो अपनी कॉमिक बुक वर्क पर एक पेन नेम स्टैनली का नाम इस्तेमाल करते हैं। वो अपने मास्टरपीस के लिए अपने असली नाम स्टैनली लीबर को बचाए हुए हैं। शायद उस किताब को लिखने का समय आ गया है, वो सोचते हैं, या कुछ और करें। सच में कॉमिक्स में होना कोई सम्मान की बात नहीं है, उन्हें केवल छोटे बच्चे या मानसिक रूप से कमजोर वयस्कों के योग्य माना जाता है। ली को दूसरों के सामने ये स्वीकार करने में भी शर्माती है कि वो जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। तो उन्होंने फैसला कर लिया, वो संकल्प करते हैं कि कल सुबह वो मार्वल के ऑफिस में जाएंगे और अपनी ये नौकरी छोड़ देंगे। 20 साल से ज्यादा सालों के बाद स्टैनली हमेशा के लिए कॉमिक्स से दूर जाने वाले, लेकिन फिर कुछ आकाश में घटित होता है। ऑफिस में अगले दिन, इससे पहले कि वो अपना इस्तीफा देते, मार्वल के मालिक उन्हें कुछ बताते हैं और ये कुछ कॉमिक बुक्स और पॉप कल्चर के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो उस दिन स्टैनली ने ऐसा क्या सुना जो उन्हें नौकरी छोड़ने पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करता है? तो ये कुछ ऐसा है जो मार्वल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देगा और इसे आज के जमाने का इंटरनेशनल पावर हाउस बनाने की राह पर ले जाएगा। और विडंबना यह है कि यह वापस डीसी पर जाता है। 1938 में डीसी के सुपरमैन की शुरुआत ने बड़े पैमाने पर सुपर हीरो बूम शुरू किया था, लेकिन लगभग एक दशक के बाद सुपर पावर का समय खत्म हो गया था। और दर्शकों ने इसके बजाय दूसरे जॉनर की ओर रुख कर लिया था। ये आज के कुछ और जॉनर की तरह एक दिन जॉम्बीज का होता है, अगला दिन आप जॉम्बीज को नहीं दे सकते। लेकिन 1956 में डीसी ने सुपर हीरोज की लोकप्रियता को फिर से परखने का फैसला किया। उन्होंने स्पीडस्टर हीरो द फ्लैश एंड यूरेका का एक नया संस्करण जारी किया। ये एक आश्चर्यजनक तरीके से हिट साबित हुआ, तो डीसी जल्दी ही अपने नए कैरेक्टर्स के साथ जारी रहा। एक नया सुपर हीरो बूम आने को तैयार था। हालांकि डीसी का सबसे एम्बिशियस टाइटल 1960 में आता है। डीसी के लोगों को एक शानदार आइडिया आया कि अगर बच्चों को एक किताब में एक सुपर हीरो पसंद है तो उन्हें क्यों ना और भी दिए जाएं, जैसे कि साथ। तो एक एडिटर सुपरमैन, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न सहित डीसी के कई बड़े नामों को लेता है और उन्हें एक सुपर टीम में जोड़ देता है।
The Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America.
जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के रूप में सभी बुराइयों के खिलाफ अच्छाई के लिए मिलकर लड़ रहे हैं। जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका कॉमिक एक धमाका है और सबसे अमीर सुपर हीरो कंपनी डीसी को और भी अमीर बना दिए। अब यहां आपको मार्वल के फाउंडर और मालिक के बारे में कुछ जानने की जरूरत है, जो स्टैनली के बॉस है। उनका नाम है मार्टिन गुडमैन। वो पहले बिजनेसमैन है, फिर कहीं जाके फैन है। उनका सबसे बड़ा स्किल एक ट्रेंड को देखना और उसे बनाना है। गुडमैन ने एक बार अपनी बिजनेस रणनीति को इस प्रकार से पेश किया, अगर आपको एक टाइटल मिलता है जो सही साबित होता है तो कुछ और जोड़ो, आप अच्छे फायदे की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए गुडमैन हमेशा ब्रेकआउट टाइटल की तलाश में रहते हैं जिसे वो कॉपी कर सकते हैं, और यही आती है डीसी की जस्टिस लीग। एक दिन मार्वल के फाउंडर प्रतिद्वंदी डीसी कॉमिक्स के एक एग्जीक्यूटिव के साथ गोल्फ कोर्स पर है। ये शायद मैनहट्टन के बाहर कुछ घंटे दूर लॉन्ग आइलैंड के पास कोई पॉश कंट्री क्लब है। दोनों गेंदों के साथ खेल रहे हैं और बिजनेस की बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो डीसी में सब कुछ कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, हमने अभी अभी ये नया टाइटल पेश किया है जो मार्केट में धूम मचा रहा है। ओह, क्या नाम है इसका? नाम जस्टिस लीग है। ये हमारे वर्तमान के ज्यादातर सुपर हीरो कैरेक्टर्स को एक टीम में जोड़ती है। बच्चों को ये बहुत पसंद है, वो अपना पैसा फेंकने में देर नहीं करते, क्या कह सकते हैं?
मजेदार कहानी, शायद झूठी हो। गुडमैन का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गोल्फ नहीं खेला। ज्यादा उम्मीद है कि गुडमैन को अपने इंडस्ट्री कनेक्ट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के भीतर मौजूद एक जासूस के जरिए जस्टिस लीग की सफलता के बारे में पता चला हो। किसी भी तरह उन्हें पता चल गया, गुडमैन को डॉलर के संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने डीसी के नए टाइटल की सफलता को भुनाने का दृढ़ संकल्प किया, उसी तरह जैसे 1939 में सुपरमैन की सफलता के साथ किया था। वो उत्साहित होकर वापस ऑफिस में आते और स्टैनली को बुलाते हैं। उन्हें अपने एडिटर के लिए एक काम मिल गया, लेकिन इस समय स्टैनली के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है।
आह स्टैन, तुम आ गए, एक सेकंड मेरे ऑफिस आना, मेरे पास कुछ है और मैं चाहता हूं कि तुम उस पर काम करो।
जी मिस्टर गुडमैन, मैं भी आपसे बात करना चाहता था।
सुनो, मैं सोच रहा था और मुझे लगता है कि हाँ हाँ स्टैन, बस एक मिनट में। देखो, मुझे अभी अभी पता चला है कि डीसी को एक नया टाइटल मिला है जो स्टैंड्स में धड़ल्ले से बिक रहा है। ठीक है ठीक है, लेकिन स्टैन, क्या तुम डीसी की जस्टिस लीग जैसी सुपर हीरो की टीम बना सकते हो? तुम हमारे पुराने हीरोज जैसे सबमरीनर, ह्यूमन टॉर्च और शायद कैप्टन अमेरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हें किसी नए कैरेक्टर के बारे में सोचने से बचाएगा। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ।
ली ऑफिस से निकल जाते हैं और इनका सिर घूम रहा है। ये गुडमैन का लकी डे है और आखिर में सभी सुपर हीरो फैंस के लिए एक लकी डे है। याद है, स्टैनली ने एक दिन पहले ही नौकरी छोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन जब वो इस नए टाइटल के लिए गुडमैन के उत्साह को देखते हैं तो वो अपने जाने के काम को 24 घंटे के लिए टाल देते हैं। ली खस्ता हाल है, वो 40 साल के होने वाले और वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी जवानी निकल रही है, और इसके साथ ही इन बेवकूफी भरी कॉमिक्स बुक्स के अलावा किसी और फील्ड में काम करने का मौका भी। कौन सी सम्मानित कंपनी उसे कभी काम करने के लिए रखेगी जब उसके पास बताने के लिए मात्र ये 20 साल का फालतू लेखन होगा। उस रात ली ने अपनी पत्नी जोन के आगे अपना दिल खोल दिया। जोन सपोर्टिव है, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसकी उम्मीद नहीं थी।
पता है स्टैन, अगर मार्टिन चाहते हैं कि तुम सुपर हीरो का एक नया ग्रुप बनाओ तो ये तुम्हारे लिए उस तरह का काम करने का मौका हो सकता है जिस तरह से तुम हमेशा करना चाहते थे। तुम नए प्लॉट्स के बारे में सोच सकते हो जिनमें उनके लिए ज्यादा गहराई और सार होगा, और दिलचस्प व्यक्तित्व वाले कैरेक्टर्स बना सकते हो। मैं बस वो कह रही हूं जो वास्तविक लोगों की बात करते हो, जो असल लोगों की तरह बात करते हैं।
उनकी इन बातों से इतिहास बदल गया। ली ने मार्वल के इस नए सुपर हीरो ग्रुप को कम से कम एक मौका देने का फैसला कर लिया, और जैसा कि उनकी पत्नी का सुझाव था, वो इन कॉमिक बुक्स को अपने तरीके से करने वाले थे। कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीसी जस्टिस लीग के साथ क्या कर रहा है। वो ज्यादा गहराई, ज्यादा परिपक्वता के साथ एक कॉमिक बुक करने के लिए अंदर ही अंदर जलते हैं। डीसी तो बच्चों के लिए, स्टैन सोचते हैं। वो अपने सुपर हीरो बुक को एक बड़े होशियार समझदार पाठक के लिए बनाने की कसम खाते हैं। अगले साल 1961 में उनके प्रयासों का नतीजा न्यूज स्टैंड पर आ जाएगा। यह ऐसा होगा जैसा कॉमिक बुक रीडर्स ने कभी नहीं देखा होगा, और यह वो बनाएगा जिसे हम मार्वल यूनिवर्स के रूप में जानते हैं। इसे द फैंटास्टिक फोर कहते हैं, जो अलग अलग रवैया रखने वाले साहसी लोगों के एक ग्रुप के बारे में है। एक साईफाई कहानी है जो गलती से कमाल की ताकतें हासिल कर लेते हैं। ये कॉमिक्स यहीं से सुपर हीरोज की कहानियों को बताए जाने के तरीकों को बदल देगी और बेमिसाल क्रिएटिविटी के युग को भी उजागर कर देगी, जो दर्जनों नए कैरेक्टर्स के बनाने का गवाह बनेगी, जिसमें से कई के पास अपनी खुद की फिल्म फ्रेंचाइज है, और मार्वल के प्रतिद्वंदी शक्तिशाली डीसी के लिए ये एक बड़े झटके के तौर पर आएगा जिससे उबरने के लिए उन्हें कई दशक लग जाएंगे। हमारे अगले एपिसोड में एक निराश मार्वल लेखक नौकरी छोड़ने का साहस जुटा रहा था ताकि वो कुछ सम्मानजनक कर सके, जैसे कि वो उपन्यास लिखना जिसे लिखने के लिए वो तरस रहा है। वो आगे जो करता है उससे पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिजनेस वॉच का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको एपिसोड नोट्स पर एक लिंक मिलेगा, बस कवर आर्ट पर टैप या स्वाइप करें। आपको हमारे स्पॉन्सर्स के कुछ ऑफर्स भी दिखाई देंगे, और हम आशा करते हैं कि आप उनको सपोर्ट करके हमारे शो को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप जो सुन रहे हैं आपको पसंद आया तो हम चाहेंगे कि आप हमें 5 रेटिंग दें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के तरीकों के बारे में बताएं। एक जरूरी नोट, हम ठीक से नहीं कह सकते कि असल में क्या कहा गया था, लेकिन ये बातचीत हिस्टोरिकल रिसर्च पर आधारित है। बिजनेस वॉस की ये सीरीज मूल रूप से डेविड ब्राउन द्वारा होस्ट की गई थी। मैं हूं आपका होस्ट संदीप आर्या। रीड टकर स्लग फेस्ट इनसाइड द एपिक, मार्वल एंड डीसी के बीच 50 साल की लड़ाई के लेखक ने ये कहानी लिखी है। कैरन डोव हमारी सीनियर प्रोड्यूसर और एडिटर हैं। ओरिजिनल साउंड डिजाइन किया है बे एरिया साउंड ने। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मार्शल लुई। वंडरी से अर्नान लोपेज द्वारा निर्मित।